सद्गुरु से दीवी नदी पर ब्रह्म सु परनाम अनंत कोटि संत राम दास निज दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद विघ्नहरण मंगल करण राम दास आनंद। कर्णवास का सत्संग वैशाख सुदी एकम संवत 1995 आज से लगभग 76 वर्ष कर्णवास दिनांक 1/5/38 ईश्वर भक्ति से सब पापों का नाश हो जाता है। कोई जबरदस्ती से पाप करता है तो उसको मारने की आज्ञा भगवान देते हैं। कर्म 3 है, संचित प्रारब्ध क्रियमाण। भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्म कर, मैं तेरे से न्याय युक्त कर्म करा रहा हूं। अर्जुन कहता है नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध में मारना अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं इनका तो प्रारब्ध खत्म हो गया, मया हतांश त्वम जहिमा व्यथिष्ठा, इनके प्रारब्ध खत्म हो गए, तू तो केवल निमित्र मात्र बन जा। मैं कह रहा हूं तो युद्ध कर, लेकिन यदि कोई एक कसाई कह दे कि मैं जो हिंसा करता हूं मैं क्या करूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तो उसका कहना युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कसाई को भगवान की आज्ञा नहीं है कि तू हिंसा कर। अर्जुन को भगवान आज्ञा देते हैं कि इनका तो 18 दिन में प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, अर्जुन तेरे लिए युद्ध करना न्याय है, दुर्योधन तुम्हारा धन नहीं देता है सो लड़कर ले, राज्य नहीं देता लड़कर ले, और जो अन्याय किया उसका बदला ले। एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को कोई कह सकता है कि ये तो धन का लोभी भी बोलता है, कोई ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना ये तो हम लोग भी रखते हैं, फिर भगवान ये बात क्यों बोलते हैं? भगवान के बोलने में कुछ और बात है। भगवान का न तो धन से कोई लेना देना है और न ही दुर्योधन से कोई द्वेष है, वे केवल धर्म पर दृष्टि रखकर अर्जुन को युद्ध के लिए बोलते हैं। कसाई जो हिंसा करता है वो नया पाप करता है। जिस प्रकार फांसी के हुक्म वाले आदमी को जल्लाद नहीं मारे और उस फांसी जिसको होनी है उसके पास उसी का कोई शत्रु आए, कह ले अब तुझे तो मरना ही है मैं तुझे मारता हूं, वो पकड़ करके उसको फांसी दे दे तो अपराध माना जाएगा। वो कहेगा जी आप भी तो इसको मारते, मैंने मार दिया। कहा नहीं, जल्लाद को आज्ञा है मारने की, तुमको आज्ञा किसने दी? इसी प्रकार कसाई को हिंसा करने की आज्ञा किसी ने नहीं दी, परंतु अर्जुन को आज्ञा भगवान ने दी है, इसलिए अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। कोई महात्मा अपने घर पहुंच जाए और हमको उपदेश दे, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है उपदेश सुनने की या महात्मा के पास जाने की, तो वो हमारे प्रारब्ध से आया है, किसी जन्म का कोई प्रारब्ध रहा होगा आ गया। मनुष्य जन्म किए हुए कर्म का फल जाति आयु सुख और दुख इनके द्वारा ही प्राप्त करता है। निष्काम भाव से न तो पाप होता है न पुण्य होता है, वो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। जिसके मन में त्याग होता है उसके द्वारा कभी पाप होता ही नहीं। पाप का फल सुख होता है, पाप का फल दुख होता है, पुण्य का फल सुख होता है। चोरी का फल नरक होगा, परंतु नरक में जाने पर भी चोरी का फल तो नष्ट हो जाएगा पर चोरी की वृत्ति बनी रहेगी। वो संस्कार अंदर पड़ा हुआ फिर चोरी कराएगा, चोरी का दंड तो मिल गया, अपराध समाप्त हो गया, पर चोरी की आदत बनी रहेगी। ये आदत बहुत ध्यान देना, ये आदत सत्संग भजन ध्यान से ही सुधरती है। यह आदत और किसी उपाय से नष्ट नहीं होती, इसलिए सत्संग भजन ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। पाप नाश में नहीं, पाप के संस्कार अंदर बैठते हैं उनके नाश में भजन साधन काम आता है। शुभ अशुभ मिश्रित ये तीन कर्म मनुष्य में रहते हैं, योगी और भगवान के नहीं रहते हैं, तीनों कार्य नहीं रहते हैं, न तो उनसे शुभ अशुभ मिश्रित तीनों ही कर्म नहीं होते। आह्लाद परिताप उसे नहीं होता है, आह्लाद माने खुशी, परिताप माने शोक, योगी को और भगवान को नहीं होते। वासना मनुष्य में सूक्ष्म वासना होती है, तृष्णा इच्छा स्प्रिया वासना, वासना का नाश होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तृष्णा, तृष्णा कहते हैं 100 रुपये वाला 1000 रुपया चाहता है, 1 पुत्र वाला 2 पुत्र चाहता है, 2 पुत्र वाला और ज्यादा चाहता है, ऐसे ये मोटा दोष है। इच्छा, भोजन के समय कहते हैं लाडू पूड़ी लाओ, इच्छा होने से ही तो बोलता है, भोजन में तृष्णा नहीं होती है। महात्मा के पास जाते हैं और अभाव की पूर्ति के लिए कहा, उसी की कामना का नाम इच्छा है। कोई महात्मा वचन छोड़ दे, कोई महात्मा आशीर्वाद दे दे, हमारे पुत्र हो जाए, धन हो जाए, रोग मिट जाए, कर्जा मिट जाए, ये सब इच्छा के अंतर्गत है। स्प्रिया साधक में रहती है, साधक में साधना की भी इच्छा रहती है और थोड़ी संसार की भी इच्छा रहती है। जितने अंश में संसार की इच्छा रहती है वो स्प्रिया कहलाती है। हम यदि किसी से संत से पूछ लें कि महाराज आपके पास कमंडल नहीं है सो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो साधक कहता है कि हमें कमंडल की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। वो ये नहीं कहेगा मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि महाराज हमारे अनुरोध से ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, तब भी कहता है कि मेरे इच्छा नहीं है, आवश्यकता का नाम नहीं लिया है। ये आवश्यकता है, स्प्रिया है। जहां कुछ नहीं लेने की इच्छा हो वहां यही है कि हमें लेना ही नहीं है, वहां स्प्रिया भी नहीं है। वासना, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, परंतु सूक्ष्म वासना जिसके नहीं रहती है वह कुछ नहीं कहता है। जो जीवन मुक्त है उसमें वासना इच्छा नहीं रहती। अज्ञान का नाश होता है परमात्मा की शरण, अज्ञान का नाश होता है परमात्मा की शरण और दया से। जो भगवान की शरण होकर आज्ञा पालन करता है वो विशेष दया का पात्र है। मनुष्य शरीर देकर प्रभु ने मुक्ति का अधिकार दिया है, इसमें मुक्ति नहीं ली तो इसमें ईश्वर का क्या दोष? हम जितने पाप करते हैं उनमें हेतु हमारा स्वभाव है। भगवान ने ठीक कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है। पाप कर्म ईश्वर नहीं कराते, और पाप कर्म प्रारब्ध से भी नहीं होता है, पाप का फल पाप नहीं होता है, पाप का फल दंड होता है। पाप का फल यदि पाप होगा तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, यह दोष तो सदा ही बना रहेगा। पाप कर्म को प्रारब्ध मान लेवे तो सत्यम वद धर्मम चर, ये जो शास्त्र बोलता है सच बोलो, धर्म के अनुसार चलो, ये कहना नहीं बनेगा, क्योंकि उसका भाग्य ही पाप में लगाता है, वो कैसे बोलेगा। इसका अर्थ है कि पाप को प्रारब्ध का फल नहीं मानना चाहिए। प्रारब्ध से यदि पाप होते हो तो दुनिया पुण्य कर ही नहीं पाएगी। महात्मा के दर्शन घर बैठे हो जाए वो प्रारब्ध मान सकते हैं, महात्मा के दर्शन परिश्रम से किए जाए तो वो क्रियमाण है। महात्मा के न मिलने पर दर्शन के संस्कार बने रहेंगे, और फिर मिल जाए तो उत्कट इच्छा होगी, हमारी चेष्टा होगी, हम जाएंगे मिलेंगे तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ काम होगा। उद्यम से क्रिया होती है, क्रिया क्रियमाण कहलाती है, पाप और पुण्य दो क्रिया होती है। सो न्यायुक्त किया हुआ फल पुण्य होता है, अन्यायुक्त किया हुआ फल पाप होता है। वृत्ति रूप संस्कार बना रहता है, वह फिर जागृत हो जाता है, पुण्य पाप का फल मिलकर शांत हो जाता है, किंतु वृत्ति बनी रहती है। इस वृत्ति को सुधारने के लिए ही भगवान मानव शरीर देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।